आ गया है 56 से 60, 56 टू 60, रुकू नंबर 13 है। रोशन दलील पर कायम रहना, कुल इन्नी नुही तो नाबुद लजीना, आप कह दीजिए कि मुझको इससे ममानियत की गई, यानी रोक दिया गया कि इनकी इबादत करूँ जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की तबाह न करूँगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं बेराहरो हो जाऊँगा और राह रास्त पर चलने वालों में ना रहूँगा। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ से, और तुम इसकी तकसीब करते हो। जिस चीज़ की तुम जल्दबाजी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है, और सबसे अच्छा फैसला करने वाला तो वही है। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, तो मेरा और तुम्हारा बाहमी फैसला हो चुका होता, और जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है, और अल्लाह ताला ही के पास है गैब की कुंजियाँ खजाने, इनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीख हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है मगर ये सब कुछ किताबे मुबीन में है, यानी आपकी मेरी तकदीरों के फैसले लिखे हुए हैं। हमें बाद में पता चलता है अल्लाह ने वो पहले ही लिखा होता है, और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गुना यानी थोड़ा सा कब्ज़ कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मियादे मुअय्यन तमाम कर दी जाए, यानी जो उसका अपॉइंटेड टाइम है, जो उसको जीने का वक्त दिया वो पूरा हो जाए। हर रोज़ देखिए हमारे साथ एक मौत और एक ज़िंदगी का खेल हो रहा है, फिर इसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा तुम क्या करते थे। ये बताइए कि जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें श्योरिटी होती है कि हम सुबह ज़िंदा उठेंगे? क्या पता बेडरूम में सोए और आंख कब्रिस्तान में खुले, क्या बनेगा? और अल्लाह को आपकी मेरी एक एक बात की खबर है। क्या करना है, फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, इस पर ईमान लाना है। गैब की कुंजियाँ अल्लाह के पास हैं, इस पर पक्का ईमान हो। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और ख़बर रखने वाला है, इस बात पर ईमान रखना है। ख्वाहिशात की तकमील की जल्दी नहीं मचाना, और दलीलें रोशन पर कायम रहना है, और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना। लोग तो आपको शरीयत से बदगुमान करके शहवत पे डालेंगे, लेकिन आपने क्या कहना है? हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। फिर आयत 61 से 70, अल्लाह को आजजी से चुपके चुपके पुकारना है, वहुवल काखिरु फौका इबादी, और वही अपने बंदे के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश्त करने वाला भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है इसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं, तो वो ज़रा सी भी कोताही नहीं करते, फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खूब सुन लो, फैसला अल्लाह ताला ही का होगा, और वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। आप कह दीजिए वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुल्म से निजात देता है? बोलिए अल्लाह ताला। तुम इसको पुकारते हो गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके कि अगर तूने हमको इनसे निजात दे दी तो हम ज़रूर ज़रूर शुक्र अदा करने वालों में हो जाएंगे। आप कह दीजिए अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है, और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। वही कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पाँव तले से, या कि तुमको गिरो गिरो करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद कि वो समझ जाएं। और आपकी कौम इसकी तकजीब करती है हालांकि वो यकीनी है। क्या क़यामत? कहते थे क़यामत कब आएगी, भाई क़यामत कब आएगी? क्यों भाई, तैयारी क्या की है? नहीं तैयारी नहीं की, बस बताएं कि आ तो नहीं रही। ये मुराद बच्चा पढ़े ना और बार बार पूछे इम्तिहान कब है, इम्तिहान कब है, तो आप भी इसी तरह से फील करेंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में ऐब जोई करते हैं, तो इन लोगों से किनारा कश हो जाइए, यहाँ तक कि वो किसी और बात में लग जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के सामने साथ यानी ना बैठिए। अब देखिए इस्लाम बार बार बुरी जगहों पर बुरे सोहबत में बुरे लोगों के साथ बैठने से मना करता है, और जो लोग परहेजगार हैं इन पर इनकी बाज़ पुरस का कोई असर ना होगा, لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں اس طرح پھنس نہ جائے کہ کوئی غیر اللہ ان کا مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اللہ اکبر، کیسے ایک ایک چیز کھول کے رکھی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ آپ کو دیکھ قرآن سنتے ہوئے کہ نیند آتی ہے، روح کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، کھانا، اور جب جسم کو کھانا ملتا ہے تب بھی سو جاتے ہیں نا، تو روح کی خوراک سونا، تو سو جائیں تھوڑی دیر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ تو کیا پتہ چلا ان آیات سے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، فضول خرچی کرنے والوں سے کنارہ کشی کرنی ہے اور دردناک عذاب جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے والے کام کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہنا ہے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے خلاف بات کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھنا، اور دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینی نہیں کرنی، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں، اور جتنا کر سکیں گے اللہ اتنے کروا لے گا ہم سے یہ کام۔ اگلا رکوع ہے جی 15، آیت 71 سے 82۔ یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے؟ کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کر دی، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس تھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کے متی ہیں۔ آپ نے اس آیت کو محسوس کیا؟ آپ کو اور مجھے ہر وقت دو قسم کے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں، ایک ہدایت کی طرف اور ایک گمراہی کی طرف۔ آج کل تو ایڈورٹیزمنٹ کو اللہ بس بچا کے رکھیں، میسیجز، وہاں سیل لگی، وہاں سے یہ خرید لو، وہاں دعوت، وہاں کانسرٹ، ٹکٹیں خرید لو عید پارٹی کی، اور ایک طرف اس آیت میں جو لکھا ہے ہدایت کی طرف بلانے والے راستے کے ساتھی۔ آپ اور میں کیا دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کو ہدایت پہ جمانے والا بنا دے، اور جتنا زیادہ آپ ہدایت پہ جمیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے اچھے ساتھی دے گا، پکی بات ہے یہ۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اسی سے ڈرو کہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا، کن، بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ اب یہاں سے سٹوری سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا اور فرمایا یہ تو میرا رب ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوچیے، شاباش، معرفت حق۔ کیا آپ نے کبھی آج تک ساتواں پارہ تلاوت میں، تجوید میں اور تراوی میں اس سوچ سے پڑھا تھا کہ اس میں حق کی معرفت کا اتنا تذکرہ؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کسی ایک تھیم کو لینے کا، اس میں سے ہائی لائٹ ہو کے وہ سب آیتیں جمع ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا مشاہدہ حق تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نعوذ باللہ گمراہ تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہر بندے کو اللہ نے دیا ہے موقع۔ آپ ذرا جائیے ناردرن ایریا میں، خوبصورت سینس دیکھیے، آپ کا بھی دل کہے گا کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو کیا کہا؟ چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، लेकिन जब वो गरूब हो गया तो आपने फरमाया, अगर मुझको मेरे रब ने हिदायत ना दी तो मैं गुमराह लोगों में हो जाऊंगा। फिर जब आफ्ताब को देखा यानी सूरज को कि चमकता हुआ तो फरमाया, हाजर रब भी, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन फिर जब वो भी गरूब हो गया तो आपने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। क्या करता हूँ, इन्नी वज्जहत वजहिया, मैं तो अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। ये है एक बंदा मोमिन। आप देखिए हज़रत जाफ़र, निजाशी, हज़रत अबू बकर और जितने भी लोगों के बारे में आप सहाबा किराम को जान चुके ना, उनकी ये खूबी थी, एंड रिज़ल्ट वो निकलते थे कि मैं शिर्क नहीं करूँगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया से भी शिर्क निकले, तो आप उनको अल्लाह ताला से जोड़िए। जितना आप लोगों को अल्लाह से जोड़ेंगे ना, खुद ब खुद बुराइयाँ उनसे छुटती जाएंगी। लेकिन कौम ऐसे लोगों की दुश्मन हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। और इनसे इनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू कर दी। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि इसने मुझे तरीका बतलाया है, और मैं इन चीज़ों से जिनको अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार कोई अमर चाहे, मेरा परवरदिगार ही हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है, क्या तुम फिर भी ख्याल नहीं करते। यानी साथ ही साथ उनको भी तबलीग कर रहे हैं, और मैं इन चीज़ों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बना लिया, हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। बस इन दो जमातों में से अमन का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है अगर तुम खबर रखते हो। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ खलत मलत नहीं करते, ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चल रहे हैं। क्या पता चला कि मुशरिक डरपोक होता है। आप देखिए कि हिंदू धर्म 4 करोड़ खुदाओं को मानने वाला दीन है, वो अपने ज़ोम में अच्छा काम करते होंगे, लेकिन मुशरिक हमेशा डरपोक होता है। मोमिन, मवाहिद, बहादुर। हज़रत जाफ़र ने अपना एक बाजू कटा तो दूसरा भी काटने के लिए तैयार कर दिया। बल्कि जंगों में आता है कि एक सहाबी ऐसे थे कि जब उन्होंने दुश्मन को मारने के लिए तलवार पकड़ी, आपको देखिए तलवार को यूँ घुमाते हैं ना, तो जब उन्होंने तलवार घुमाई ना, अब ज़रा मेरे हाथ को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मोमिन कितना जुरत वाला है। हाथ ऐसे हिलाया ना, तो ये जो जोड़ था ना, ये उखड़ गया, तो बाजू फ्री हो गई, जैसे ढीली हो गई। अब जब वो तलवार पकड़ते ना, तो तलवार घूमती ना, क्योंकि बाजू उतरा था। आपको तो उन्होंने क्या किया, अपना पाँव रख कर इस हाथ को काटा, तो हाथ इधर पकड़ लिया। दर्द भी नहीं होता, कोई बेहोश करना नहीं पड़ता, कोई उसके ऊपर स्प्रे नहीं लगता, क्योंकि मारफत-ए-हक। आप जो काम खुशी से करते हैं ना, आपको उसमें वक्त का एहसास भी नहीं होता। आप कहते और जो जान छुड़ाना, वो कहते हैं छोड़ो कुछ भी ना करें तो बेहतर है। तो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए आपने मैंने क्या करना है, आपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, नमाज कायम करनी है, अल्लाह से डर के रहना है, ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं करना, यानी किसी तरह के ज़ाहरी बात नहीं, ढके छुपे शिर्क में मुलव्वस नहीं होना, अल्लाह ताला के लिए यकसू हो जाना है और हक़ का मुशाहिदा करना है। आगे जी रुकू नंबर 16, 83 से 90, राहे हिदायत पे चलना है। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम, और ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम को इनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं मर्तबों में बढ़ा देते हैं। याद रखिए, तौहीद वाले का दर्जा ज़रूर बुलंद होगा। हज़रत इब्राहिम से भी ये बात हमें मिल रही, बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला है, और हमने इनको इसहाक दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हर एक को हमने हिदायत की, और पहले ज़माने में हमने नूह को हिदायत की और इनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान को और अय्यूब को और यूसुफ को और मूसा को और हारून अलैहिस्सलाम को, और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को जज़ा दिया करते हैं, और ज़करिया को, याहिया को, ईसा और इलियास को सब नेक लोगों में शामिल थे, क्योंकि इन्होंने हक को पाल लिया था, पहचान लिया था। और हज़रत इस्माईल और जसा और यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फजीलत दी। दुआ करे अल्लाह हमें भी दुनिया वालों के लिए चुन ले। नीज़ इनके कुछ बाप दादाओं को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को, और हमने इनको मकबूल बना दिया, और हमने इनको राह रास्त की हिदायत भी की। अल्लाह ही की हिदायत है जिसके ज़रिए अपने बंदों में से जिसको चाहे हिदायत करता है। और अगर फर्जन यानी बिलफर्ज, फॉर सपोज़, ये हजरात भी शिर्क करते तो जो कुछ ये अमाल करते थे सब इकारत हो जाते। आयत 88 नोट करें, 18, 18 नबियों के नाम लेकर अल्लाह कहता है वलाउ अशरकू, अगर ये भी शिर्क करते तो इनके अमल ज़ाया होते। आपके मेरे पास तो पहले ही थोड़े से, अल्लाह हमारे अमाल में से शिर्क निकाल दे। ये ऐसे लोग थे कि हमने इनको किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाई थी, बस अगर ये लोग नबूवत का इनकार करें तो हमने इनके लिए ऐसे बहुत से लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं हैं। यही लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ने हिदायत की थी, बस आप भी इन्हीं के तरीके पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा तो नहीं चाहता, यह तो सिर्फ तमाम जहान वालों के वास्ते एक नसीहत है। कुरान इज़ अ रिमाइंडर। क्या पता चला हमने क्या करना है? अल्लाह की हिदायत को पाना है, सालेहियत को इख्तियार करना है, राह रास्त पे चलना है, अंबिया के मिशन को आगे बढ़ाना है, अल्लाह के रास्ते पर चुने जाने की दुआएं करनी है। किस किस का दिल जा रहा है कि अल्लाह में चुन ले? सब का दिल चाहता है अल्लाह आप सबको चुन ले क्यामत तक के लिए। दावत का मुआवजा नहीं चाहना। रुकू नंबर 17, 91 से 94। अल्लाह की कदर पहचानने का हक अदा करना है। इसका ताल्लुक किससे है? मारफत हक से। शुरू में क्या मिम्मा अरफू मिनल हक, पूरी ये जो सूरत अल अनाम हमने पढ़ी है ना, अगर ज़रा सा वक्त खुला खुला होता तो मैं आपको गिन के बताती कि इन आयतों में अल्लाह को पाने की, हक को पहचानने की कितनी निशानी है। आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। इतनी निशानियाँ आपको मक्की सूरतों में मिलती हैं जिससे इंसान वाकई अल्लाह ताला को पा ले, उन्हीं में से अब कुछ निशानियाँ हम पढ़ेंगे पारे के एंड तक। वमा कदरुल्लाह हक़ कदरी, और इन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करना वाजिब थी वैसी कदर ना की। कैसे? जबकि यूं कह दिया कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं नाजिल की। आप ये कहिए वो किताब किसने नाजिल की जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, जिसकी कैफियत ये है कि वो नूर है। कुरान क्या है? नूर, रोशनी, और लोगों के लिए वो हिदायत है जिसको तुमने इन मुतफर्रिक और आग में रख छोड़ा। हमने कुरान को बंद करके रख दिया। शमा के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे ना, या आप शेंगलिर जलाकर उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दे तो अंधेरा होगा। इसीलिए जिस नूर के होने के बावजूद हमारे इर्द गिर्द अंधेरे हैं। एक दुआ कर दीजिए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और अल्लाह इस नूर को हमारे ज़रिए से आम कर दे। जिनको जाहिर करते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो, यानी जिसको तुमने इन मुतफरिक और आग में रख छोड़ा है, जिनको जाहिर करते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो, और तुमको बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको तुम नहीं जानते थे और ना तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, फिर इनको इनके खुराफात में खेलते रहने दीजिए। और ये भी एक ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाजिल किया जो बड़ी बरकत वाली है। क्या आप इस कुरान की बरकत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? टाइम मैनेज हो रहा है? इफ्तारी बन रही है? सहरी बन रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है ताकि आप मक्का वालों को और आस पास वालों को डराएं, और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं और वह अपनी नमाजों पर हमेशा की करते हैं यानी मुदाफ़मत। और इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगाए या यूं कहे कि मुझ पर वही आती है? झूठी नबूवत का दावा कौन करेगा? बोलिए, जो हक को नहीं पहचानेगा। हालांकि इसके पास किसी बात की भी कोई वही नहीं आई। और जो शख्स यूं कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया इसी तरह का मैं भी लाता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ हाँ अपनी जान निकाल लो, आज तुम्हें जिल्लत की सज़ा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह तआला की आयात से तकब्बुर करते थे, अब अकेले आ गए हो। इस आयत को सुनिएगा ज़रा ज़हन से, दिल से। और तुम हमारे पास तन तन्हा आ गए, अपनी मौत को सोचें। कितने भी लोग घर में होंगे, जब रूह निकलेगी ना तो हम आसमानों पर अकेले जाएंगे। जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था और जो कुछ हमने तुमको दिया था इसको अपने पीछे ही छोड़ा है, किधर गई कुर्सियाँ, मेज़, बेड, रिक्लाइनर, गैजेट, तुम्हारे इम्पोर्टेड सामान, तुम्हारा ब्लू पासपोर्ट, तुम्हारा ग्रीन कार्ड, सब किधर है? सब पीछे छोड़ा है। और तुम्हें बड़ा मान था ना कि बड़े लोग मुझे जानते हैं, बड़े लोग चाहते हैं, तो उसका सवाल हो रहा है। और हम तुम्हारे हमरा तुम्हारे इंशिफात करने वालों को नहीं देखते जिनकी नस्बत तुम दावा करते थे कि वह तुम्हारे मामले में शरीक है। वाकई तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो गया, और तुम्हारा दावा सब कुछ किया गुजरा हो गया, सब गया गुजरा हो गया, यानी सब वो इज्जत गई, जाहो हशम गए, मुलाजिम गए, नौकर गए, गुलाम गए, ज़मीनें गईं, कुछ भी तो साथ नहीं आया। सोचिए अकेले कब्र में जाएंगे, अगर आज की रात मेरी सांस उखड़ जाए तो मेरे साथ आप में से कोई जाएगा? शौहर जाते हैं, बीवी जाती है, बच्चे जाते हैं, उन्हें कहा करें कि इतना जो रो रहे हो कि आओ तुम्हें भी कब्र में डाल दें तो सब भूल जाएंगे। तो करने के काम क्या है कि अल्लाह के हकूक पूरे करने हैं, नमाज़ों की हिफाजत करनी है, अल्लाह की किताब से कुछ नहीं छुपाना, किताब इलाही का काम करके इसका हक अदा करना है, जान नहीं छुड़ानी, आयात से तकबर नहीं करना और बहसों में नहीं पढ़ना। और आगे है जी रुकू नंबर 18 आयत 95 से 100, अक़ल से काम लेना है, सेकंड लास्ट रुकू है ये। इन्ना अल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह ताला दाने को और गुठलियों को फाड़ने वाला है, वो जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वो बेजान को जानदार से निकालने वाला अल्लाह ये है, बस तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। वो सुबह को निकालने वाला, इसने रात को राहत की चीज़ बनाया और सूरज और चांद को हिसाब से रखा, ये ठहराई बात है ऐसी ज़ात की जो कि कादिर बड़े इल्म वाला है, और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम इनके ज़रिए से अंधेरों में, खुश्की में और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं इन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं, और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और फिर एक सपुर्द होने की। पता है आपको ये कौन सी जगह? कब्र, पहले दुनिया और फिर कब्र। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। अल्लाह को पाने की कुछ और निशानियाँ, वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके ज़रिए से हर किस्म की नबातात को निकाला, फिर हमने इसे सब शाख निकाली कि इससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से इसके कुछ गुच्छे में से खोशे हैं जो नीचे को लटक जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। हर एक के फल को देखो जबकि वो फलता है, और इसके पकने को देखो, इनमें दलाइल हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ईमान का पकना और फल का पकना, इसमें बड़ी निस्बत है। जब मैंने अभी ये सूरत अलनाम पढ़ाई थी आयत पायत में, तो आप सिर्फ इस आयत वाली फाइल खोल कर सुनिए तो बहुत खूबसूरत रिलेशन दिया था कि ईमान कैसे पकता है और फल कैसे पकता है। अल्लाह ने इधर तस्करा क्यों किया, बहुत ही खूबसूरत एनालॉजीज हैं इसमें। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया है, और इन लोगों ने अल्लाह के हक में बेटे और बेटियां बिला सनत तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर हैं इन बातों से जो ये करते हैं। तो हमने क्या सीखा अपने लिए? इल्म हासिल करते रहना, समझ बूझ से काम लेना है, हक का मुशाहिदा करने के बाद इसको पा भी लेना है, सच्चे इल्म को पुख्ता करने का इरादा करना है, और अपने इर्द गिर्द अल्लाह की निशानियाँ देखनी है, तौहीद के दलाइल पर गौर व फिक्र करना है, और मार्फत की दुआएं भी करनी है कि अल्लाह तू मुझे अपना कुर्ब अता फरमा। आखिरी आयत रुकू नंबर 19 101 से 110, वही की पैरवी। बदीउस समावाती वल अर्द, वो आसमानों और ज़मीन का मूजद है, यानी पहली दफ़ा उनको बनाने वाला, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है, हालांकि इसके पास तो कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर चीज़ को खूब जानता है। ये अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज़ को पैदा करने वाला है, तो तुम इसकी इबादत करो, और वो हर चीज़ का कारसास है, इसको तो किसी की निगाह मुहित नहीं हो सकती, यानी अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, और वो सब गाहों का इहाता कर लेता है। इस वक्त भी अल्लाह आपको मुझे देख रहा है, और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है। अब बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक बीनी के ज़राए पहुँच चुके। ये हक बीनी क्या है? मार्फत हक का ज़रिया। बस जो शख्स देख लेगा वो अपना फ़ायदा करेगा, और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। यानी अल्लाह ने कायनात और कुरान दोनों हमारे सामने कर दिए, अब भी अगर हक की मार्फत ना हुई तो बदनसीबी है। सूरज निकला और कोई आंखें बंद कर ले तो रोशनी कहाँ से आएगी? और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब की तरफ से आपके पास आई है। अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मुशरिकीन की तरफ ख्याल ना करें। यहाँ किस चीज़ की मार्फत का जिक्र है? दीन की सच्चाई, वही की सच्चाई। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते, और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया, और ना आप इन पर मुख्तार हैं। और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो भी जाहिलाना जिद से गुजर कर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीके वालों के लिए उनका अमल मरगूब बना रखा है, फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है, बस वो इनको बतलाएगा जो कुछ भी वो किया करते थे। आप देखिए, लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करते हैं ना, मुख्तलिफ दीन वाले, हर एक अपने पे खुश है। कोई आग की पूजा करके खुश है, कोई बुत की पूजा करके खुश है, कोई स्लीप के आगे झुकता है, कोई मस्जिद में जाता है। अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन मैं बताऊँगा कि हक़ क्या था। और इन लोगों ने कस्मों में बड़ा ज़ोर लगा कर अल्लाह की कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो ज़रूर इस पर ईमान ले आएंगे, यानी हक को पा लेंगे। आप कह दीजिए निशानियाँ सब अल्लाह के कब्ज़े में हैं, और तुमको इसकी क्या खबर कि वो निशानियाँ जिस वक्त आ जाएंगी ये लोग तब ईमान न लाएंगे, और हम भी इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये लोग इस पर पहली दफ़ा ईमान न लाए थे, और हम इनको इनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे। आप पता है ये आखिरी आयत क्या? पहली आयत क्या थी? वह इज़ा समी उमाउन रहमान के बाद क्या आया था? मिम्मा अरफू मिनल हक। इस आयत में क्या है? वनुकल्लिबु अफ़्फिदतहुम वअबसारहुम। आप देखिए, ये आंखों पे मैंने उनके हाथ रख दिए, मुझे आप में से कोई नहीं दिख रहा, आप कानों पे उंगली रखिए, आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये पहली और आखिरी आयत का रब्त है। अल्लाह ने सारी निशानियाँ दे दी, उसको पालो, उसके ऊपर ईमान ले आओ, फिर हक़ के लिए बोलो। लेकिन जब बंदा नहीं मानता ना तो अल्लाह सल्व कर लेता। आप किसी पैदा होते बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दें और कुछ अरसा पट्टी बांधी रहने दें, वो नबीना हो जाएगा। आप कानों में डांट डाल दीजिए, बच्चा बहरा हो जाएगा। बिलीव मी, जो हक़ हिदायत को नहीं पाते, इतनी निशानियाँ कहीं कुरान की और कायनात की, उसको नहीं सुनते, अल्लाह फिर उनके दिल से तलब छीन लेता है। और अल्लाह कभी ये इंतकाम ना करिए, अल्लाह का बहुत बड़ा इंतकाम है। इसीलिए कुछ लोग आप उनको बुलाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं आते। आप कहते हैं नमाज़ पढ़ो, कहते पढ़ी हुई है, जो तुम पढ़ लो। आप उन्हें कहते हैं ये गंदी चीज़ मत देखो, आप कहते चुप करो मैं करूँगा। गलत से गलत काम करके अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो खुलासा क्या है कि तमाम इंसान बराबर हैं, अल्लाह ने सबको हिदायत की तलब दी है, इसके बावजूद कुछ लोग मखजूब हो जाते हैं। अल्लाह ने अंबिया कराम को दुनिया वालों पर फजीलत दी, उन्हीं में से एक नबी इब्राहिम एक मुश्रिक माहौल में पैदा किए गए। जब उनको अल्लाह की मार्फत मिली तो कौम ने उनसे झगड़े शुरू कर दिए, और अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ आपके मेरे इर्द गिर्द हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस धोखे में हैं कि हम अगर अल्लाह की बात मान लेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी मुश्किल होगी। और इस रुकू में अमल की बातें, बसीरत से काम लेना, इल्म रखना है, वही की पैरवी करनी है, इल्मी रवैये अपनाने हैं, बुरे अमल को खुशनुमा नहीं समझना, और जहालत के रवैयों से बचना है। तो ये था व इज़ा समीउ, सातवां पारा। खुलासा क्या निकला? रहनुमाई कुरान से लेकर अमल सुन्नत के मुताबिक करना है तो हक़ की मार्फत ज़रूर मिलेगी। मुहासबा कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इस सूरत में क्या कहा? वलज़ ज़ुलुमात वलज़ नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं। इसी तरह कामयाब और नाकाम लोग बराबर नहीं हैं, आँखों वाला और अंधा बराबर नहीं, तारीकियाँ और रोशनी बराबर नहीं, ठंडी छाँव और धूप की तपश बराबर नहीं। सूरह ज़ुमर में हम ये बात पढ़ेंगे। तो जानने और न जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नसीहत अकल वाले लेते हैं। क्या ये सात पारे पढ़कर मैंने नसीहत ले ली है? क्या आज के इस पारे से मुझे हक की, यानी अल्लाह रसूल और अपनी असल हकीकत की पहचान हो गई है? अल्लाह ताला आपकी मेरी इस्लाह कर दे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।